नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सेब महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, राज्य सरकार कृषि के विविधीकरण पर विशेष बल दे रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में झुग्गी बस्तियों का फिर से सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए और हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद होंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन उनके संबंधों की नींव है। मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के प्रति संकल्पबद्ध हैं।
भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनी रही।
भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे उद्योग और ग्राहक दोनों को लाभ होगा। देहरादून में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से सेब महोत्सव आज से शुरू हुआ। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये महोत्सव राज्य की कृषि क्षमता, मेहनत और किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि के विविधीकरण पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी, सुगंधित और औषधि पौधों, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा मशरूम उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है। नाबार्ड की ओर से कृषि के विभिन्न आयामों पर आधारित 20 नवाचार पायलट परियोजनाओं की जानकारी देते हुए श्री जोशी ने कहा कि इसमें जैविक उत्पादों की ट्रेसिबिलिटी, मोरिंगा आधारित एकीकृत कृषि मॉडल, फार्म टूरिज्म, प्राकृतिक खेती, औषधि एवं सुगंधित पौधों पर आधारित मॉडल और शून्य ऊर्जा कूल चैम्बर जैसे अभिनव प्रयोग शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण आजीविका के अवसरों को सृजित करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि देश के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू की लत से परेशान है। इधर रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन शुरू हो गया है। 60 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के 30 गांवों को तंबाकू मुक्त ग्राम और 400 स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। बागेश्वर में जिला स्तरीय विद्यालयी वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में अंडर 19 वॉलीबॉल का खिताब कांडा ने अपने नाम किया। अंडर 14 कबड्डी बालक वर्ग में कपकोट ने बाजी मारी। वहीं अंडर 14 कबड्डी बालिका वर्ग में कपकोट की बालिका टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला खेल समन्वयक कमलेश तिवारी ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम ही नहीं बल्कि टीम भावना, अनुशासन और मानसिक मजबूती को विकसित करने का सशक्त जरिया है।
आज शिक्षा विभाग के तत्वाधान में हमारी जिला स्तरीय वॉलीबॉल और जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं हमारी चयन ट्रायल भी है, जिसमें जो हमारे प्रतिभागी जो स्वर्ण पदक विजेता होंगे और चयनित प्रतिभागी जो होंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। इसमें एक वॉलीबॉल हमारा आज हो रहा है, कबड्डी हमारा, दो खेल हमारे यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इसमें हमारे जोन प्रतिभाग कर रहे हैं, 7 जोनों के प्रतिभागी हमारे जनपद के प्रतिभाग कर रहे हैं।
प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया। प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक संस्थानों का राज्य हित में अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए सुसंगठित प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। देहरादून में आज 6th दून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के पोस्टर व ब्रोशर का विमोचन करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि समाज और युवा पीढ़ी को विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देहरादून और प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के कई वैज्ञानिक व शैक्षिक संस्थान मौजूद हैं, जिनका राज्य हित में समय समय पर सहयोग लिया जाता है। मुख्य सचिव ने इस दौरान यूकास्ट और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इस दिशा में कारगर पहल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड में झुग्गी बस्तियों का पुनः सर्वे कराया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सचिवालय में प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से संबंधित बैठक में मुख्य सचिव ने वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी 1 व श्रेणी 2 के पात्र लोगों का स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चलाकर विनियमित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का आयोजन किया जाए। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद होंगे। इसे लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ ही जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष नरेंद्र जी सिंह बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब में लाखों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका।
लेकिन ये यात्रा और अधिक हो सकती थी, क्योंकि इस बार मौसम ने साथ हमारा तो इस रूट पे ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, लेकिन एक जनरल परसेप्टिव बन गया था कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, इस करके जो संगत आना चाह रही थी वो भी नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी ईश्वर जी कृपा से इस बार तकरीबन 2,76,000 आदमी के अंदर यात्रा कर सकते, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर।
चमोली जिले में लिलियम की खेती से काश्तकारों की आय बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। जिला योजना के माध्यम से विभाग ने दशोली विकासखंड के रौली मंडल बरागना और कोटेश्वर गांव के 12 काश्तकारों को लिलियम के 24,000 बल्ब वितरित किए। मुख्य उद्यान अधिकारी नितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों से विभाग की ओर से 16 काश्तकारों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिलियम का उत्पादन किया जा रहा है। इससे काश्तकारों को बेहतर आय प्राप्त हो रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष जिले में लिलियम के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत जिला योजना के माध्यम से 19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इससे काश्तकारों की आय में वृद्धि होने के साथ ही आजीविका के संसाधनों को मजबूती मिलेगी। दीपावली के त्योहारों को लेकर हल्द्वानी दमकल विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। विभाग ने बढ़ती भीड़ और आतिशबाजी के दौरान संभावित आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए शहर भर में सुरक्षा इंतजामों की जांच शुरू कर दी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार और फायर स्टेशन ऑफिसर MP सिंह के नेतृत्व में दमकल टीम ने आज शहर के विभिन्न पटाखा गोदामों और दुकानों का फायर सेफ्टी निरीक्षण किया। श्री किरार ने बताया कि हल्द्वानी क्षेत्र में इस वर्ष कुल 5,000 किलोग्राम क्षमता वाले एक गोदाम और 12 दुकानों को मानकों के अनुरूप आतिशबाजी का लाइसेंस जारी किया गया है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में दमकल वाहन तैनात किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सेब महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, राज्य सरकार कृषि के विविधीकरण पर विशेष बल दे रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में झुग्गी बस्तियों का फिर से सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए और हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।